अब देखिए गीता जी के अंदर अर्जुन कितने विनम्र भाव से और युद्ध नहीं करना चाहता, हाथ जोड़ता है, गिड़गड़ाता है भगवान के सामने और कहता भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये देखिए प्रथमोध्याय अध्याय नंबर एक क्या कहते हैं 32वें श्लोक में, हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुख को ही, हे गोविंद मैं ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से जीवन से क्या लाभ है। ये 32वां श्लोक। अब 33वें में कहा कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आगे देखो अब श्लोक नंबर 34 में, गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे सुसर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग, हे मधुसूदन मरने पर भी तीन लोकों के राज्य के लिए भी, हे मधुसूदन मारने पर भी इनको मार कर, इनको नहीं मारना चाहता मैं किसी को भी, और यदि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ओए होए कहता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कि मैं तो तीनों लोक भी कोई देना तो भी ना लड़ूं और ना मारूं इनको, मैं तो ये चाहता हूं कि इनसे मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अतातियों के को मारकर तो हम पाप ही लगेगा। अब 37 में देखो, इस प्रकार कहकर अतव हे माधव अपने ही इस बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अब इसमें क्या कहना चाहे है अर्जुन ने कि परमेश्वर ये तीन लोक के अधीश्वर, यदि मुझे कोई तीनों लोक का राज भी देवे तो भी युद्ध नहीं करूं, ऐसा अनर्थ नहीं करूंगा, और फिर इसे इंद्रप्रस्थ के राज्य के लिए इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो मतलब ही नहीं, अब मैं ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। और यहां तक कहा कि ये सामने खड़े दुर्योधन और कौरव मुझे अवनी हत्या को तीर मार दें तो भी मैं अपना मरना नेक समझता हूं, जिस मेरे एक मरने से और लाखों बहन करोड़ों बहन विधवा होने से बचेंगी और करोड़ों बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यही अध्याय नंबर एक श्री गीता जी का श्लोक नंबर 46। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब कहता है कि मैं मर जाऊं अकेला ही और युद्ध ना हो बहुत अच्छा हो। अध्याय नंबर दो श्लोक नंबर 4 में कितना मार्मिक, 5 में श्लोक नंबर 5 में कितना मार्मिक हृदय विदारक बात अर्जुन कहता है, महानुभाव हे भगवान कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा है उसको, गुरुजनों को न मार के और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से स्नेह और कामरूप भोगों को तो ही भोगूंगा। ओए होए होए। अब देखिएगा भक्त समाज, आपके सामने सच्चाई है कि अर्जुन कहता है कि इससे अच्छा, युद्ध से अच्छा तो हम भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण होते वहां पर अपनी सोधी में और काल ने उसके अंदर प्रवेश ना किया होता तो वो परमात्मा वो पुण्यात्मा कृष्ण जी कह देते अर्जुन बहुत अच्छा सोचा तूने, धन्य है तेरे माँ बाप ने, ऐसे समय पर भी युद्ध के लिए तू मना कर गया, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब वो काल उसमें प्रवेश कर गया, और भगवान श्री कृष्ण को तो स्वयं नहीं मालूम मैंने सारी गीता में क्या कहा, उन्होंने बोला, अगर ऐसा बोला होता तो वो नहीं कहते मैं काल हूँ, भगवान श्री कृष्ण काल नहीं, वो तो पुण्यात्मा परमात्मा, वो तीन लोक के सतोगुण भगवान है, वो तो इन काल ने नचा दिया इन सबको। अब देखिएगा इसी का प्रमाण आपको संक्षिप्त महाभारत में देता हूँ। युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध गीता में स्वयं काल भगवान ब्रह्म भगवान कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, कृष्ण जी का तो कवर कवर यानी शरीर शरीर बोल रहा है, जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई कैसेट दूसरी डाल दे, टेप रिकॉर्डर वही हो लेकिन कैसेट कोई और बोल रही है उसमें, ऐसा। इस ब्रह्म भगवान ने छरपुरुष ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, ये तो मैंने सब मार रखे हैं, तू तो निमत निमत बन जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हुआ तो इस पृथ्वी का राज भोगेगा और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। युद्ध हो जाता है, पांडव विजयी होते हैं, कौरों का विनाश हो जाता है, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा कर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब मैं द्वारका शीघ्र ही द्वारका जाने वाला हूं। तब सभी ने मिलकर एक सलाह बनाई कि श्री कृष्ण जी शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हैं, इनसे कुछ ज्ञान आत्म ज्ञान शिक्षा प्राप्त की जावे, इनसे सत्संग सुना जाए, ये बहुत अच्छे प्रवचन करता है। तब सभी ने मिलकर कहा कि हे श्री कृष्ण देव, देव आप शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ धार्मिक शिक्षा देकर जाओ, एक सत्संग करो। श्री कृष्ण जी ने स्वीकृति दी और साथ में स्थान और समय निहित कर दिया, वो दिन निश्चित किया। उस निश्चित दिन को सत्संग स्थल पर भक्तात्मा सत्संग श्रवण करने के लिए एकत्रित हो रही हैं, बैठ रही हैं, अपना स्थान ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी सत्संग स्थल के आजू बाजू में आसपास टहल रहे हैं। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, आज सत्संग के अंदर वही गीता सुनाना जो आपने मुझे युद्ध के दौरान सुनाई थी, मैं उस निर्मल ज्ञान को भूल गया हूँ, युद्ध होने के कारण, युद्ध के कारण उत्पन्न बुद्धि दोष में से मैं भूल गया हूँ, मुझे अब कुछ याद नहीं है, कृपा वही निर्मल ज्ञान गीता जी का पुनः बताना ज्यों का त्यों। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, बुद्धिहीन, तूने ऐसे निर्मल गीता के ज्ञान को क्यों भुला दिया, तूने याद रखना चाहिए था। और फिर स्वयं कहते हैं कि अर्जुन अब ज्यों का त्यों बताना मेरे बस की बात नहीं, मैं ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अब विचार करो भक्तात्माओं, अब मैं सत्संग कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, इस ज्ञान को मेरे से कभी सुन लेना तभी सुना दूंगा, और आप इसमें से 20% याद नहीं रख सकते एक बार के सत्संग श्रवण में, और मैं कहूं कि मुझे तो कोई याद नहीं, और तुम्हें कहूं तुम क्यों भूल गए नादानो, तुमने याद रखना था सारी परिभाषा प्रभु की, ये कोई न्याय संगत नहीं। अब इसी का प्रमाण आपको देता हूं संक्षिप्त महाभारत में। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसी के अंदर आपको दिखाता हूं। ये बहुत पुराना है गीता प्रेस गोरखपुर से, ये श्री दयदयाल गोविंद का द्वारा ही टीका है। संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का। अब इसी के 1531 पृष्ठ पे आप स्वयं भी पढ़िएगा, अब यहां से शुरू करते हैं हम बीच में, बाकी आप देख लेना इसको ध्यान से। अब वो वाटिका में टहलते हुए अर्जुन ने पूछा, पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके मातम का ज्ञान नजदीक हो और ईश्वरीय वर्णन ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था वह अब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप शीघ्र ही जल्द ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे अर्थात पूरा गीता ज्ञान सुना दीजिए। इस पर श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वभूत रूप धर्म सनातन पुरुषोत्तम तव का परिचय दिया था और गति का निर्णय करते हुए नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो। ओए होए, अब देखो तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को जोका त्यों दुहरा देना, गीता को जोका त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, अपना नहीं किसी और परमात्मा का वर्णन किया था। अब विचार कीजिए पुण्यात्माओं, ये सच्चाई कहाँ है और किस प्रकार आपके सामने आ रही है। यह देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ याद नहीं और मैं ज्योका तो वो नहीं बता सकता, और अर्जुन पर डांट लगा रहे हैं कि बुद्धिहीन श्रद्धाहीन तूने इतने निर्मल ज्ञान को क्यों भुला दिया। और स्वयं को तो कह रहे हैं कि मैंने नहीं मालूम मैंने क्या कहा था, अब ज्योका तो नहीं बता सकता अर्थात पूरी गीता नहीं सुना सकता। और अर्जुन के ऊपर डांट मार रहे हैं कि श्रद्धाहीन बुद्धिहीन तूने याद क्यों नहीं रखा। इससे सब सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम ही नहीं मैंने गीता में क्या कहा था। फिर कहते हैं कि उस समय तो मैंने उस परमात्म तत्व का, मान लीजिए ये भी विचार करना होगा, अपना नहीं उस परमात्मा का ज्ञान दिया था। अब यहाँ विचार करना होगा कि प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोली नहीं गीता, वो काल बोल गया उसके अंदर प्रवेश करके, और ये बात कहें कि उसमें मैंने योग युक्त होके ये सब कुछ कहा था, और अब कहते हैं मैं योग युक्त नहीं हो सकता। जब युद्ध के दौरान योग युक्त हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसमें तो पीस ऑफ माइंड था, उसमें तो और शीघ्र योग युक्त हो जाना चाहिए था। और फिर भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम नहीं, जोका तो नहीं कह सकते, और श्री वेद व्यास जी ने वही गीता जोकी तो फिर लिख दी। अब यहां विचार करना, फिर वो काल वेद व्यास जी में प्रवेश कर गया और जोका तो गीता को फिर लिखवा दिया। श्री कृष्ण जी ने बोला ही नहीं था बेचारे ने, नहीं तो ऐसी पुण्यात्मा ऐसा जुल्म नहीं करवाते, दुनिया का अनर्थ नहीं करवाता। वो काल समझ गया कि यदि अर्जुन नहीं लड़ेगा तो श्री कृष्ण कहेगा चल भाई धन्य तेरी मां ने, बहुत अच्छा, और तुझे 100,000 जीव खाने को नहीं मिलेंगे। किसको? काल भगवान को। उसने ऐसा जानकर श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश किया और ज्ञान तो सत्य दिया जो पूर्ण परमात्मा का, जैसा भी वो है जो का तो, लेकिन स्वयं अपनी जो टिप्पणी दी वो अधूरी दी। कैसी दी? कि तुझे पाप नहीं लगेंगे अर्जुन, तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। आगे बताएंगे अर्जुन को पाप लग्या। एक भक्त आत्मा मुझे मिला, उसने कहा कि हमारे गुरुदेव ने गीता जी को बड़ा छान रखा है, आपके पूज्य गुरुदेव जी का क्या शुभ नाम है? इस दास ने उस भक्त से पूछा, श्री आसाराम जी। आज कौन नहीं जानता इस हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका नाम गूंज रहा है। फिर इस दास ने भी उनके वचन संस्कार टीवी पर देखे, उन्होंने क्या कहा आसाराम जी ने वचनों में कि गीता जी के ज्ञान को सुनकर अर्जुन का भय नहीं रहा, अर्जुन निर्लेप हो गया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ कहा उन्होंने। अब ठीक है, महापुरुषों का उद्देश्य तो अच्छा ही होता है, भक्त आत्माओं को मार्गदर्शन करने का ही होता है। अब यहाँ उन्होंने फिर ये भी बताया कि हमारे गुरुदेव आसाराम जी द्वारा गीता बिल्कुल जोका तो सही श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, आप उनको पढ़कर देखना। मेरे से उन्होंने कहा, किसने? श्री आसाराम जी के शिष्य ने। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पूजा करते हो, आपका इष्ट कौन है? आसाराम जी के शिष्य ने बताया, मेरा इष्ट श्री कृष्ण भगवान है, यही सर्वस्वा है। हमारे गुरुदेव ने बताया यही पूर्ण ब्रह्म है, यही पार ब्रह्म है, यही सर्वशक्तिमान है, और जो कुछ चाहे सो कर सकते हैं। और हमारे गुरुदेव आसाराम जी ने गीता जी का सत्य ज्ञान दिया है। गीता जी तो ज्ञान सत्य ही है, लेकिन सरलार्थ ठीक किया होगा, बहुत अच्छी बात है, मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने ये श्रीमद् भगवत गीता भेंट की। ये श्रीमद् भगवत गीता भेंट की ज्योकी तो आसाराम जी द्वारा रचित, अर्थात इस रचित तो नहीं, अनुवाद किया उन्होंने। ये नीचे देखिए, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से, और ये देखिएगा इनका चित्र आसाराम जियों का। अब इसमें देखना, वही अध्याय नंबर 7 दिखाता हूं आपको। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 18 देखो, अनुतम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम लिखा है। 7वां अध्याय 18वां श्लोक ये लिखा है, माम एवं अनुतमाम गतिम, ये अनुतम है। इस अनुतम का इन्होंने क्या अर्थ किया है, अति उत्तम। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह मत मत गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही स्थित अच्छी प्रकार स्थित है। देखो, ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें, यहां इसका अनुतम लिख लो, जानो सत तो इसका ये अनुतम लिख दो, अनुतम लिख दे तो सारा ठीक हो जाएगा। और जो लोहे को सोना बतावे वो कितना ज्ञानी संत होगा। अति उत्तम लिखा है अनुतम को, और फिर देखिए, या अगर हम लिख दें अनुतम ही, या अनुतम लिखना चाहिए, अश्रेष्ठ मेरी अश्रेष्ठ गति स्वरूप में अथित रह स्थित है। अब देखो चौबीसवा, अब चौबीसवें में फिर विचलित है ये भी, वहां अनुतम का अति उत्तम लिखते हैं और यहां स्वयं ये देखो अनुतम को अनुतम ही लिख करके इन्होंने भी पीछा छुटा लिया। ये देखो ये अनुतमम, ये 24 नंबर श्लोक है, और ये देखिए अनुतम, यहां अनुतम लिख दिया, वहां भी अनुतम लिखना चाहिए था। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम, अनुतम माने घटिया अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अब बताओ वहां अति श्रेष्ठ एक ही शब्द का अर्थ किया, वहां भी अनुतम कर दे तो ठीक था, लेकिन इनको स्वयं ही ज्ञानी श्री कृष्ण को ये पारब्रह्म पूर्ण ब्रह्म और सर्वशक्तिमान बता रहे हैं। अब ये विचार करना, फिर इस दास ने उस परम पूज्य संत श्री आसाराम जी के शिष्य से पूछा, आप अन्य उपासना भी करते हो, अग्जी करते हैं, क्या करते हो, श्राद्ध निकालते हो क्या? हां जी, हमारे गुरुजी तो बताते हैं, श्राद्ध निकालने की विधि भी बताते हैं। तो श्राद्ध निकालना क्या होता है, पितृ पूजा, और पितृ पूजा देवी के नवरात्रे भी बताते हैं। हां जी, वो भी बताते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा है, बाकी देखिएगा गीता जी के उन्हीं के कर्म कमलों द्वारा, उन्हीं के आपके पुरदेव के कमलों द्वारा रचित ये श्रीमद् भगवत गीता संत श्री आसाराम जी द्वारा। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम साबरमती अहमदाबाद द्रियावर रोड जहांगीरपुर सूरत, फोन नंबर इतने। अब यहां देखिएगा, वो स्वयं गीता जी बता रही है और अपने हाथ से वो टीका भी कर रहे हैं, अध्याय नंबर 9 का 9वां अध्याय श्लोक नंबर 25 देखें। ये देखो, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब क्या कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना है देवी देवताओं की पूजा और पितृ पूजा भूत पूजा। अविचार को जो संत ये कहे गीता कुछ बतावे, अर्थात ये हमारा सिलेबस है पढ़ाई का, भक्ति का, भक्तों का, इसमें लिखा कुछ है और शिक्षक पढ़ा कुछ रहा है, तो बच्चे सारे फेल होंगे, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कभी सफल नहीं हो सकती, वो पास नहीं हो सकते। अब यहाँ देखिएगा, गीता जी मना करती है आन देवताओं की पूजा नहीं करना। आन देवता में भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं तीनों गुण के आधार पे, और ये स्वयं लिखते हैं गीता में, यही स्वयं भी लिख रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया, यानी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया, वही नर अधम नीच व्यक्ति, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, वो मुझे नहीं बचते अर्जुन, मुझे मीन ब्रह्म काल की पूजा नहीं करते। तीनों गुणों की पूजा तो रिजेक्ट करते हैं, इन्हीं के शब्दों में देख लो, ये स्वयं बता रहे हैं सातवें अध्याय में बारहवें श्लोक में से प्रारंभ है गीता जी श्री आसाराम जी द्वारा टीका। अपने करकमलों से लिख रहे हैं कि इन तीनों गुणों को ये बारहवां श्लोक है, यहां से शुरू होता करी कीजिए। और जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब सतोगुण सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिवजी, ये तीनों गुण की पूजा को मना किया है भगवान ने, ब्रह्म ने इस गीता जी में। और स्वयं कृष्ण की भी पूजा व्यर्थ, क्योंकि ये सतोगुण के अवतार विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी हैं। अब आपको आगे दिखाता हूं, तेरहवें श्लोक में ये स्वयं क्या कह रहे हैं। तेरहवें श्लोक में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी से, इन तीनों प्रकार के भावों से, अर्थात इन्हीं की भक्ति के आधार पर सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से प्रे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है कि मैं इनसे दूर हूँ, वो कैसे है वो फिर देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, ये देखिए दिखने दे, एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, और फिर ये देखो, एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश विभागीय प्रभु है, राम है, ये नीचे के सात लोक, ये पृथ्वी लोक, ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नर्क, और ये धर्मराय का लोक, ये भगवान शिव का लोक, एक विभागीय मंत्री एक प्रांत में, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये काल यहाँ इनसे दूर है, यहाँ भी दूर है ये, और ये महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव रूप में, ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में यहाँ रहता है, और ये इनको दर्शन नहीं देता, अपनी कृपा से इनको घुमा फिरा के कभी दूर से दर्शन दे देता है। यहाँ पर ये माई है और यहाँ एक स्वर्ग लोक बना रखा है, महास्वर्ग इस काल में। अब फिर देखिए 21 ब्रह्मांड का चित्र, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक महाब्रह्मांड है, ये एक महाब्रह्मांड है, और इसमें पांच ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है, पांच, ये चार महाब्रह्मांड है ऐसे ऐसे, इसमें एक ये ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव प्रभु हैं, और विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं, ये ऐसे ऐसे पांच का ग्रुप है, ऐसे ऐसे चार महाब्रह्मांड में पांच पांच का ग्रुप बनाकर ब्रह्मांड का, ये चार महाब्रह्मांड में सभी को रोका हुआ है, और ये काल इनसे बाहर रहता है। ये देखो, ये काल इनसे बाहर रहता है, जो विराट रूप है, हजार भुजा वाला है। ये कहता है कि मैं इन तीनों गुणों में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से दूर हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे ही हो रहा है। इसी काल ने ये नकली सतलोक नकली अलखलोक नकली अगम लोक अनामी लोक बनाए हैं। यहाँ इन अच्छी पुण्यात्माओं दोनों ने युगों युगों अच्छी साधना वेद विधि से की हुई है, उन 12 को चुन लेता है, यहाँ रखता है उन अपने ऋषियों को, और फिर इनको यहाँ पर गलत मार्ग दर्शन करने के लिए, शास्त्र विरुद्ध साधना बनाने बताने के लिए इन 12 गुरुओं को भेज देता है। उनके पिछले पुण्य कर्मों के आधार पर वो सुखी भी नजर दिखाई देते हैं, और सब शास्त्र विरुद्ध साधना अपने अनुयायियों को बताते रहते हैं। वेदों में लिखा कुछ है, गीता में लिखा कुछ है, साधना कुछ बता रहे उसके विपरीत, ये काल के दूत बताए। वो 12 वहाँ रखता है अपने एक कोने में और फिर उनको यहाँ भेज देता है। गलत मार्गदर्शन करके लाखों की संख्या में गुमराह कर जाते हैं भोली आत्माओं को, फिर उसके दोष के भागी ये स्वयं ये संत बनते हैं। इनको फिर वहाँ उल्टा लटकाया जाता है, इनको भी सजा मिलती है जिनको ये काल अपने दूत बनाकर भेजता है, ये नहीं बख्शता किसी को भी। तो ये काल इनसे न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सतगुण तमगुण है, ये भी अभी आपको देवी भागवत महापुराण में प्रमाण दूंगा कि स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में है, हम तो नित है ही नहीं, हम तो जन्म और मरण में है, हमारा आविर्भाव होता है, हमारा जन्म होता है। अब फिर वही गीता जी, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद के द्वारा, और ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता, श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद, इसी में फिर देखिए वो सातवा अध्याय जो प्रकरण चल रहा है, सातवा अध्याय और श्लोक नंबर 15-14 देखो, 13 तो आपने सुना, आपको सुना दिया, 14 देखो, क्योंकि ये अलौकिक अति अद्भुत है। ये देखो, तिरगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये तीन गुणों के द्वारा फैला गया जाल, ये मेरी माया, ये काल कह रहा है, बड़ी दुस्तर है, बड़ी निकम्मी है, बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष केवल मुझ को निरंतर भजते हैं वे ही इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। अब ये देखो, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, यानी तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर भाव स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझे नहीं बजते। ओए होए, अब देख लो, कई भक्तात्मा ये शंका व्यक्त करते हैं कि ये क्या प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिवजी है, क्योंकि वो तो वही कर सकते हैं जिनको ना तो गुरु अच्छे मिले, उनके गुरुओं को स्वयं ज्ञान नहीं, जिनको जो आज तक अभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अजन्मा बता रहे हैं वो संत, वो कितने ज्ञानवान होंगे ये समाज स्वयं देख लेगा। अब दिखाता हूँ आपको कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये देवी भागवत महापुराण प्रमाण करती है। आप देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री मद भगवत श्री देवी भागवत केवल हिंदी, सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके प्रकाशक श्री मद भगवत गीता मोटा टाइप, नीचे देखो हनुमान संपादक हनुमान प्रसाद पोदार जमनलाल गोस्वामी, इन दो दो ने मिलकर इसका वो किया है। अब यहाँ देखो, इसके तीसरे सकंद में अजर अमर नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, ये कहते हैं, ये तीसरा सकंद चल रहा है ऊपर, ये तीसरा स्कंद है, ये देखो ये तीसरा स्कंद, इसमें है, यह तुम शुद्ध स्वरूपा हो, विष्णु जी कह रहे हैं स्वयं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार सारा संसार तुम ही से उदासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव है। ओए होए, हम तो जन्मते और मरते हैं, त्रोभाव माने मृत्यु है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, प्रकृति ये गीता में पता लगेगा आपको, प्रकृति से ही तीनों गुण उत्पन्न, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं स्वयं भगवान शंकर बोले हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं और उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, विष्णु भी काल और इस देवी से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा भी तो तुम्हारे बालक हुए, तो मैं तमोगुणी शंकर, लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। अब देखो भगत समाज, अब पता चलेगा कि सच्चाई कहाँ है। अब आपको इसी देवी भागवत महापुराण की संस्कृत सहित दिखाता हूँ। ये देखो, श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम, इसके संपादक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, इसके प्रकाशक हैं, और इसी के तीसरे सकंद में स्वयं भगवान स्वीकार कर रहे हैं हे माता। ये देखो तीसरा सकंद है, ये सब लोकों के सृजन करने की इच्छा करने वाले हरि, हरि यानी विष्णु ब्रह्मा और शिव, ये सब तुम्हारे चरणामृत की भक्ति और प्रीति को प्राप्त होकर करती हुई सब करते हैं हे माता, करते हैं हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, आप हमारे पर दयालु हो, तो आप तो हमको तमगुण में, शिव कह रहा कि मुझे तो तमगुण बना दिया आपने, किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण है। ओए ए मालिक, अब देखो शिव जी कह रहे हैं कि आप हमारे पर दयालु हो तो हमें ऐसा दुष्कर्म करने की ड्यूटी क्यों दी, ब्रह्मा शरीर बनवावा विष्णु पाड़र मैं मारू। देखो रो रहे हैं बेचारे, ये स्वयं कह रहे हैं हे माँ, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो, दयालु हो, तो हमको यानी मुझे तो तमोगुण में प्रदान कर दिया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण, मैं युक्त किए हैं। ये संस्कृत भी साथ है, ये ऊपर देखिएगा, ये यहां से है, यदि दया दर्माना न स अदम कथम विहित च तमोगुण, मैं तो तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय ब्रह्मा, कमल जय माने कमल में उत्पन्न होने वाले रजोगुण, और सुहित किमो सतोगुण हरि, विष्णु को आपने किस लिए सतोगुण बना दिया है। अब ये सब प्रमाण देख कर वो भक्त आत्मा जो आसाराम जी के सेवक, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और कहा जी अब तो पुनः सोचना होगा। मैंने कहा भी अब भी समाज नहीं सोचेगा तो फिर मौज है। जिन्होंने आज तक ये ज्ञान नहीं दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या चीज है, एक त्रिलोकीय यानी एक विभागीय मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बता रहा है तो वो आपको क्या लाभ दिला सकता है। और भूत पुजवावा पितर पुजवावा कोई भी ला लो जो शास्त्र के विरुद्ध साधना जो दे रहा है वो आपका साथी नहीं, चाहे मैं भी क्यों ना हो आपका वो दुश्मन समझ लेना। इस मनुष्य जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे जैसे अनजान संत, तो ये इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं। और मेरी तो यही प्रार्थना है सभी भक्तात्माओं से संतों से कि इन शास्त्रों को पुनः देखो और साथ में अपनी हार स्वीकार करो, प्रभु से क्षमा याचना करो पूर्ण परमात्मा से, वो बड़ा दयालु है आपके ऊपर मेहर करेगा क्योंकि वही हमारा सबका पिता है कबीर परमेश्वर। और सत भक्ति स्वयं भी स्वीकार करें और अनुयायियों को भी कह दें कि सत मार्ग ढूंढ लो जहां मिला है। एक समय ये दास राजस्थान में सत्संग कर रहा था, वहां पर एक वर्द व्यक्ति आया मेरे से मिला और कहा कि महात्मा जी आज तक मैंने बहुत भ्रम भटक लिया और मेरे भी 500,000-2,000 शिष्य भी हैं लेकिन मैं अधूरा गुरु हूं। आज मुझे पता चला कि मैं महान दोषी हूं और मैंने आज शाम को जाकर सबसे कह दिया और सब जगह इतला भिजवा दी कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं स्वयं अधूरा हूं और पाप का भागी हूं, तुम्हारा वजन उठा लिया मैंने, मैंने आज सत्संग सुना है और तुमने इच्छा हो अपनी मर्जी से कहीं संत ढूंढ लो, मैं पूरा गुरु नहीं हूं और आज से मैं अपने आप को आपके भार से मुक्त करता हूं। हाँ ठीक है, मैंने जैसे जितना सोच थी अच्छी सोची थी आपके लिए और मैं भी उन्हीं महात्मा जी से नाम ले लिया है, मेरे पास आए और अक्षमा याचना की, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं तो एक दास हूं आपका, आप मेरे गुरु बनकर आ जाओ लेकिन पूजा ये कर दो इस दास के बताए अनुसार। उसने उपदेश लिया, अपने सैकड़ों की संख्या में उसी दिन से सागे कुछ बाकी, फिर कहने लगे जी दराओगे उस टाइम हम आएंगे और अपना उपदेश लेंगे। मैंने कहा जल्दी मत करना, इन शास्त्रों को दोबारा देखो और फिर तीन नाम का मंत्र है उसी से लाभ होगा अन्यथा नहीं होगा, चाहे कितनी बात बनावे। ओम नाम तो सर्वप्रथम और वो भी पूरा अधिकारी संत देवे, ये अधूरा ज्ञान देने वाले तो आपको जो भी दे रहे हैं वो तो स्वयं ही मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई भी संत है चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, इसलिए वो तीन नाम का मंत्र है। वो कबीर परमात्मा ने ही ये मार्ग सत जब भी आए हैं चलाया है, आज भी उन्हीं की कृपा से ये सूर्य उदय हो रहा है और सभी ने आके लाभ उठाना चाहिए। सत साहिब। अब गीता जी में प्रमाण फिर देखिए, काल कहता है कि मेरे से और इस प्रकृति देवी से इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की और साथ में सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यही गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये अध्याय नंबर 14 है, इसमें काल भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुझे वो ज्ञान वो अनुत्तम ज्ञान ज्ञान उत्तम उत्तम से उत्तम ज्ञान में फिर बताऊंगा जिसको सुनकर ये सब संसार सागर से पार हो जाते हैं। ज्ञानों में अति उत्तम उस, अब देखो यहाँ उत्तम का अर्थ अति उत्तम, बिल्कुल ठीक किया, और अनुत्तम का भी अति उत्तम लिखा है तो वो कहे के समझदारी है उनकी। ज्ञान को फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार सागर से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, अर्थात जिनको सही ज्ञान हो जाएगा कि काल है और उसके ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। ये देखो अब ये तीसरा चौथा और पांचवा श्लोक देखिएगा, पहले श्लोक नंबर, ये श्लोक नंबर 3 है, इसमें स्वयं ये काल कह रहा है कि अर्जुन मेरी ये महत मूल ब्रह्म प्रकृति चलन दे। आप ये अध्याय नंबर 14 देखो, अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 सुनो, फिर सुनो, ये पूरा संस्कृत है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, मेरी मूल प्रकृति तो सभी प्राणियों की, भूतों की, प्राणियों की योनि गर्दान स्थान है, और मैं, काल कहता मैं, उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। तत् माने उसके सहयोग से सब भूतों की, भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो प्रकृति या शेरा वाली, प्रकृति शेरा वाली तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली योनि है, और मैं उसमें बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये काल इन सब का पिता है, और वह प्रकृति माता है शेरा वाली। और ये देखो पांच में स्पष्ट लिखाया है कि हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, प्रकृति संभवा, प्रकृति से शेरा वाली से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी गुणा, तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसा कर रखते हैं, ये कर्मों में बांध देते हैं। अभी इसी को आप श्री आसाराम जी के द्वारा रचित ये गीता जी के द्वारा देखें, इसमें भी ये यही स्वीकार करते हैं आसाराम जी द्वारा, ये श्रीमद् भगवत गीता और उन्हीं के आश्रम से प्रकाशित है। श्री संत आसाराम जी आश्रम, श्री योग वेदांत सेवा समिति, श्री संत श्री आसाराम जी आश्रम साबरमती अहमदाबाद, ये इनके फोन नंबर आ दिए। और इसमें भी 14 नंबर में श्लोक नंबर 14 में स्वयं देखें, अध्याय नंबर 14 14वां अध्याय। अच्छा, यहाँ देखिए तीसरे में, ये अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भस्थान स्थान है, मैं उस योनि में चेतन समुदाय का गर्भ को स्थापन करता हूँ, उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ये अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब चौथे पांच में देखो कितना स्पष्ट है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिवजी, ये प्रकृति शेरा वाली से उत्पन्न पैदा हुए तीनों गुण, इनमें तीनों गुण है रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी में, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो इस जीव को बांधे रखते हैं, और कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। अब समझो, अब इन्हीं के द्वारा जो प्रारंभ करते हैं गीता का टीका, ये क्या लिखते हैं महात्मा जी, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, भगवान श्री कृष्ण ने, ये कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है, उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम आदि। अब मैं ये जो दिखाना चाहता हूँ कि स्वयं कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता का ज्ञान कहा है, अब समाज स्वयं फैसला करे। अब भक्तात्माओं, ये ना समझना कि ये दास किसी का निंदक है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाना चाहता है, और न ही तो ये निंदक हूं मैं किसी का, और न ही किसी को ऊंचा और नीचा दिखाना चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं ये समाज देर से समझ पाएगा। मैं चाहता हूं कि हम एक पिता के संतान हैं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी बेचारे अंधे कर रखे इस काल ने, इनको भी नहीं मालूम हमारा पिता कौन है, हमारी माँ कौन है। अब पता चला, वो भी हीट एंड ट्रायल मेथड थे, पता चला कि अब प्रकृति हमारी माँ है और पिता का फिर भी ज्ञान नहीं। वो खूब ढूंढ रहे हैं, उन्होंने शुभ साधनाएं की हैं, लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं देता। जब अपने पुत्रों को भी मारकर खाता है ये काल, और इनको खुद भगवान शिव कितने उदास होकर कहते, माँ अभी देवी भागवत महापुराण आपने देखा और पढ़ा, हे माँ आप अगर हमारे ऊपर दयालु हो तो ऐसे दुष्कर्म में हमें क्यों लगाया। मैं तो जीवों को मारू और ब्रह्मा यहाँ पैदा करवा विष्णु पाले। अब ये काल इनका पिता 1,00,000 जीवों का आहार करता है और गुप्त रूप में सब कार्य इन पुण्य आत्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से ये करवाता रहता है। अब ये सत ज्ञान है। प्रातः स्मरणीय श्री आसाराम जी के शिष्य जो इस दास से मिले, बड़े विनम्र भाव से उन्होंने बात की, क्योंकि भक्तात्मा में भक्तों जैसे लक्षण हुआ ही करते हैं, उनको तलाश भी होती है प्रभु की, और तलाश भी वही कर रहे हैं जिनको ये ज्ञान है कि प्रभु के भक्ति बिना ये जीव अधूरा है। इस दास को उस श्री आसाराम जी के शिष्य ने ढेर सारी पुस्तकें आसाराम जी द्वारा रचित अर्थात उनके आश्रम से प्रकाशित इस दास को दी। ये देखिएगा, इसमें ऋषि प्रसाद ये आदि काफी पुस्तकें, ये नाना प्रकार के प्रकार से उन्होंने रची हैं। उनमें से गीता जी भी उनके द्वारा करकमलों द्वारा बनाई गई, ये बहुत सी पुस्तकें हैं। इनमें से एक ही पुस्तक को ध्यान से देखा, सर्वप्रथम ये पुस्तक ध्यान से पढ़ा देखा ऋषि प्रसाद, श्री संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित। और ये देखना इधर ध्यान से, वर्ष 12 अंक 112 अप्रैल 2002 चैत्र मास विक्रमी संवत 2058 ये इस का प्रकाशन का वो है। ये इसके प्रश्न नंबर 2 पे है, आप देखिएगा ये प्रश्न नंबर 2 को पढ़ना जरा। ये प्रश्न नंबर 2 पे तत्व दर्शन नाम से ये हेडिंग है, सामान्य और विशेष ज्ञान संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से, ये उनके प्रवचनों से है। यहां देखकर इधर देखिएगा, लगता है कोई कहता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेंगे, बैकुंठ में जाएंगे तब मिलेंगे, आसाराम जी प्रवचन कर रहे हैं, गुरु कृपा करेंगे फिर मिलेंगे। परंतु जब गुरु कृपा हुई और ठीक से जान लिया तो लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है, भगवान को पाना कितना आसान है, कितना स्वयं करे इतना आसान, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। ये ध्यान से पढ़ना भक्तवृंद, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया, राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया, राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया, राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनते सुनते मिल गया। अब पहले इसको विचार करना फिर सारी समझ में आ जाएगी आपके। इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया, अब बताता हूं क्या मिल गया। एक तरफ तो आसाराम जी भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान मानते हैं और श्री कृष्ण के परम पुजारी हैं। और कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। अब यदि श्री कृष्ण जी भगवान थे, परमात्मा थे, तो वो तो अर्जुन को पहले ही मिल चुके थे, वो तो उनके साथ रहते ही थे, फिर वो युद्ध के मैदान में कैसे मिला उनको? युद्ध के मैदान में उन्हें क्या मिला? काल का विराट रूप। अब इससे सिद्ध होता है कि वो उनके प्रवचनों से कि वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। आप ही विचार करना, हो सका इस दास को कोई भूल लग जावे। अक्षमा भी मांगता हूं, मैं इतना सियाना नहीं हूं, लेकिन मैं इसी बीमारी का मरीज था, मुझे तलाश थी प्रभु की, पर ऐसे ही ये बेसलेस स्टोरी, ये अधूरे व्याख्या हम संतों के सुनते सुनते बहरे हो गए थे। अब ये नहीं पता ये कहना क्या चाहते हैं, समाज को देना क्या चाहते हैं। ये नहीं, मैंने इन सभी का पढ़ा है, मुरारी बापू जी, आजकल श्री सुधांशु जी, बाल योगेश्वर जी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, अब इन सबको देखा इस दास ने, तब तंग आ गया, तब प्रार्थना करी, दाता आप ही रजा करो, आप कैसे हो, आप कौन हो, हम तो थक लिए। तब कृपा हुई, गुरुदेव का मिलन हुआ, फिर ये अंधेरा हटा। अब ये दास चाहता है कि सभी भक्तात्मा फिर दोबारा सोचें, बंद करना बैठे इस मनुष्य जीवन को मत खो, और ये भी ना सोचो कि इस दास से ही सब कुछ मिलेगा, नहीं, तलाश करो सच्चाई की, जहां मिलती है वहीं ढूंढ लो। अभी तक जितने भी संतों के ज्ञान प्रवचन आज तक हमने सुने और आपने भी सुने, इनमें वो सच्चाई नाम मात्र भी नहीं है। ऐसा इस दास का अपनी निर्णय है, विचार है, इनको सारे शास्त्रों को, इनके विचारों को सुन के। एक तरफ तो बापू जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वसवा, यही ओम नमः भागवतेव वासुदेव आदि इनके मंत्र भी देते हैं, और श्री कृष्ण को ये सर्वसवा मानते हैं। वो श्री कृष्ण तो पहले ही अर्जुन के साथ रहते थे, अब युद्ध के मैदान में मिल गया, यह बात नहीं समझ में आई। यदि युद्ध के मैदान में मिलने वाली शक्ति काल को ही ये प्रभु मान रहे हैं, तो भी ये काल के ही जाल में है, और आप भी हैं और अनुयायी भी हैं, सीधा सा बात है। आगे तो बहुत लंबा विवरण है कि राजा परीक्षित को क्या मिला सातवें दिन। राजा परीक्षित की केवल वृत्ति इस संसार से हटी और स्वर्ग पहुंच गया, बस ये मिला। जब स्वर्ग के पुण्य समाप्त होंगे, फिर नरक जाएगा, फिर गधा बनेगा राजा परीक्षित, इतना मिला उनका। ऐसा ही खटवांग, जो श्री रामचंद्र जी के दादाजी थे, उसको खट दिलीप भी कहते हैं, उन्होंने हृदय से याद किया, उसको पता चला था कि दो घड़ी की तेरी आयु है बस, तब भूल गया सारे जीवन को। अब कोई बता दे किसी को कि तेरे ज्यादा जीवन नहीं है, फिर देखो उसकी तड़प है। पहले प्रभु भक्ति को चाहने वाली आत्मा होती थी, गुरु बनाए होते थे, विधिवत साधना करते होते थे, उसमें वो मरते हुए दो घड़ी में ही स्वर्ग प्राप्ति की, और कुछ नहीं हुआ उसको, केवल स्वर्ग चले गए उनके पुण्यों के आधार पर। जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, ये सटवांग अर्थात ये खट दिलीप भी नरक जाएगा, फिर 84 में गधे और कुत्ते के चक्कर में आएगा। राजा जनक को घोड़े की रकाब पर अगर भगवान मिल जाता, तो फिर राजा जनक ही नानक जी के रूप में दोबारा जन्म नहीं लेते। श्री गुरु नानक देव जी वही राजा जनक के अवतार हैं हुए, और फिर कबीर परमेश्वर से मिले तो उनका छुटकारा हुआ, मुक्ति हुई। अब ये भक्त समाज स्वयं सोचे और ढूंढ, सच्चाई को ढूंढ है। अब यहां एक समस्या और आती है, एक भक्त मुझे मिला, वो कहने लगा जी आपके अभी तक जितना सत्संग सुना है, इससे तो बिल्कुल निर्णय हो गया है कि परमात्मा कौन है, वो तो शास्त्र प्रमाणित है, और संतों को आंखों देखे संतों का प्रमाण आपने जो दिया है, वो तो हृदय में समा गया है। अब अब ये समस्या आई है मेरे सामने, क्या कहता है कि मैंने एक संत का नाम ले रखा है, उसने नाम भी बताया राधा स्वामी पंत से, और आपके सत्संग से ये तो ज्ञान हो गया कि अभी तक हमारे संतों ने सृष्टि रचना भी नहीं बताई हमारे को, और जिन्होंने सृष्टि रचना का ही ज्ञान नहीं है तो ले कहां जाएंगे, जिनको ये ही नहीं मालूम वो परमात्मा है कौन, अगर देखा होता उन संतों ने तो सीधा कहते वो कबीर परमेश्वर है, वेद गुण गावे और कुरान शरीफ बतावे, आंखों देखा गरीबदास जी बतावे, गुरु नानक देव जी बतावे, धर्मदास जी बतावे कि वो, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करता, काशी में जब बनारस में कबीर साहब के जुलाहा रूप में दर्शन किए थे, जब वो अपना कपड़ा बन रहे थे तब गुरु नानक देव जी ने जो सचखंड में देखे थे वही परमात्मा शतलोक में देखे थे, वही स्वरूप ज्यो का त्यों वही रूप उनके साथ गया था सतलोक में, जो तख्त पर बैठ गए थे और अपने दूसरे रूप को अंतर्ध्यान कर दिया था, तब कहा था कि भाई सूरत मलुक की वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये किसी को सबके सामने ये नहीं बता महसूस होने देता कि मैं भगवान हूं, और क्योंकि हमारे वो तो कबीर साहब तो कहते हैं मैं प्रभु हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, लेकिन हमारा अधूरा ज्ञान ये स्वीकार नहीं करता कि आप भगवान हो।